चारित्र मोक्षम लेक्चर नंबर 2। आपके हाथ में जो पुस्तक है वो हिंदी अनुवाद है उसका, और अभी हम उसी के आधार से यहाँ चारित्र मोह उपशमना, जिसको कहेंगे चारित्र मोह की उपशमना। अभी तक हमें वो तो दर्शन मोह की उपशमना, जिसको हम उपशम सम्यक के नाम से जानते हैं, उसकी हमने कुछ थोड़ी चर्चा की थी। यहाँ अपना विषय तो चारित्र मोह की उपशमना का चलेगा। उसके पहले अभी जो अपना विषय हुआ था उसके कुछ प्रश्न आए हैं यहाँ पर, उस पर चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये प्रश्न एक है, उदय ने उगिरना ए बेमा शू तफावत छे। हमने लिखा था उदय होना इन्हें क्या है, जो सत्ता में पड़े हैं परमाणु, और जिनकी वो स्थिति पूर्ण हो जाती है, वो पूरा का पूरा निषेक हम कहेंगे, उसकी एक निषेक में अनेक अनंत परमाणु और उनकी स्थिति पूरी हुई है, तो हम उसको निषेक रचना जब दिखाते हैं तो नीचे के निषेक को कहेंगे उदय रूप निषेक। उसके ऊपर का नेक्स्ट समय में उदय आने वाला है, फिर उसका नेक्स्ट समय उदय। इस तरह से सत्ता में जितने कुछ अनेक सागरों के भी कर्म पड़े हैं उसको कहेंगे निषेक रचना। तो जो उदय में आता है यानी उसका भी निमित्त बनता है, उस समय निमित्त बनता है ना, जीव जैसे परिणाम करता है, या जो आदि कर्मों में कहेंगे जैसे वो शरीर आदि की रचना होती है, उसका उदय का फल है। तो उसका उदय होता है ऐसा हम देखा था, यानी कर्म हर समय में एक एक समय में एक एक निषेक फिर जाता है, फिरने को ही उदय कहते हैं। उसको निर्जरा कहेंगे पर वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, इसलिए उसको हम उदय कहेंगे। है वो तो फिरना है, छूट जाना, छूट जाके वो परमाणु कहाँ जाते हैं उसके हमने कोई अभी विषय नहीं है, पड़े रहेंगे वहां पर या कहीं लोकाकाश के किसी एंड में चले जाएंगे। तो यहाँ उसको कहेंगे उदय। उदय ने उस समय उसका खिलना यानी वो उदय रूप है, अभी जीव की सत्ता में है, अभी नेक्स्ट समय में वो जीव की सत्ता में नहीं है, उसका फल तभी मिलेगा, उसको कहेंगे उदय। उदीरना किसको कहते हैं, तो ये जो निषेक के ऊपर एक ऐसी सब रचना हुई है, तो हमने देखा था कि प्रत्येक निषेक में से कुछ परमाणु, थोड़े थोड़े अनंत अनंत पड़े हैं उसमें से थोड़े परमाणु छूट कर अपने अपने नीचे के निषेकों में आ गए, कुछ अपने नीचे के थोड़े निषेकों में आए, कुछ और नीचे आएगी, कोई और नीचे आएगी, कोई उदयावधि में आके मिलेंगे। उदयावधि किसको कहते हैं, उदय का जो एक समय है वहां से लेकर एक आवली प्रमाण जो निषेक है, आवली किसको कहते हैं, ये तो माप है समयों का, इसको कहते जघन्य युक्ता संख्या, कितने जो समय है जघन्य युक्ता संख्या, जो मिनिमम असंख्यात है उसका नाम है जघन्य परिता संख्या। तो जघन्य परिता संख्या को जघन्य परिता संख्या बार लिख कर आपस में गुणा करो, यानी आपकी भाषा में जघन्य परिता संख्या रेस्ट जघन्य परिता संख्या, तो जो संख्या आएगी उसको कहेंगे जघन्य युक्ता संख्या, वो है एक आवली। ये काल का नाप है, ऐसे हजारों कोड़ा कोड़ी आवली एक सेकंड में होती है, और आपके साइंटिस्ट में सेकंड के कितने भाग किए हैं, नैनो सेकंड है उसका भी छोटा कुछ बना दिया, वो तो संख्या किससे उसकी, ये तो कितना बड़ा असंख्यात का नाम, वो उसको समय कहते हैं। यानी आवली इतनी छोटी है तो समय कितना सूक्ष्म होगा, ऐसे एक समय में केवल ज्ञानी वो पूरे लोकालोक को जानते हैं। एक एक समय की जो बात है यहाँ, ये हमारे क्या पकड़ में नहीं आती, ये केवल ज्ञानी ने जो बताया है आगम से हम इसको निश्चित करते हैं। एक समय की जो हम चर्चा करते हैं यहाँ पर भी, वो हमने आगम से जानी हुई बातें। तो यहाँ बात अपनी उदय और उदीर्णा की चल रही है। तो जो नीचे के उदयावली प्रमाण निषेक है, उसके ऊपर के निषेकों में से जो परमाणु छूट कर नीचे आकर अपकर्षण होकर उदयावली में आकर मिलते हैं, और एक बार उदयावली में आएंगे तो उस क्रम से उसका उदय हो गया, अब वो ऊपर नहीं जा सकते, उसको कहेंगे उदीर्णा। यानी जिसका उदय चल रहा है उसी की उदीर्णा कही जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या, जो उदय रूप है उसकी उदीर्णा कही जाए। जैसे वेदनी की साता वेदनी का उदय है तो हम कहेंगे साता वेदनी के परमाणु जो उदयावली में आकर उसके साथ उदय रूप होते उसको हम कहेंगे उसकी उदीर्णा हो गई। असाता की उदीर्णा होती है, जब हम भूख लगते हैं क्या होता है, असाता की उदीर्णा होती है उस समय, और तीव्र उदय हो जाता है अनुभव का, रोग आते हैं, इस तरह से उसका वर्णन है। उदय ने सामान्य रूप पूरा निषेक खेला, और वो उदय रूप निषेक के साथ ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उसके साथ आकर जल्दी उदय में आकर गिरते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा। ऐसी उदीर्णा सामान्य से सब कर्मों में होती है। जब हम कहते हैं कर्मों का बंद होने के बाद आबाधा काल नाम का एक प्रमाण है, उतने काल तक वहाँ कोई निषेक नहीं बने, उसके बाद वहाँ वो निषेक, उस समय बंधा हुआ निषेक, पहला निषेक कब उदय में आएगा, आपदा के बाद। परंतु एक आंवली के बाद उन बंधे हुए सभी निषेकों में से कुछ परमाणु छूटकर सत्ता में जो पड़े थे और जो उदय में आ रहे हैं, उन परमाणुओं के साथ उसकी उदीर्णा होकर उदय हो सकता है। यानी उदीर्णा की अपेक्षा उदय एक आंवली के पश्चात हो सकता है, कुछ परमाणु का, पूरा निषेक का नहीं, कुछ परमाणु। और यह ऐसा हर कर्म में हो रहा है, कुछ हो हर सातों ही कर्मों में बंधने के बाद एक आवली के बाद उसकी उदीर्णा शुरू होकर उसमें से कुछ परमाणु छूटना चालू होता है, उसका उदय भी होगा, उदीर्णा भी होगा। उसके लिए जीव ने कुछ किया इसलिए होती ऐसी कुछ बात नहीं, ये कर्मों की सहज अवस्था है, इसको उदीर्णा कहते हैं। ये आपका प्रश्न था, उदय ने उदीर्णा बेमा शुरू कर पा। आपका ये प्रश्न है, आबाधा काल के अंदर निषेक रचना ही नहीं हुई है तो उदय कहाँ से हुआ, ये इनका प्रश्न है। तो आबाधा काल के अंदर निषेक रचना नहीं, वो एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा बात है। जो पहले में बंधे हैं, सत्ता में पड़े हैं, वो तो उदय रूप ही हो रहे हैं। हमने तो आपको बताया आठवें कर्मों का उदय हर समय चल रहा है, वो पुराने बंधे हुए उनके तो निषेक पड़े हैं सत्ता वाले, वो उदय रूप भी हो रहे हैं। अभी इस समय बंधा हुआ है वो तो आबाधा के ऊपर पड़ा है, तो सत्ता की तो आप उदय के समय से लेकर ख्याल में आई बात। आबादा जो बताते हैं एक एक समय में बंधे हुए की अपेक्षा वो जुदी जुदी आबादा, उस समय भी उदय तो चल रहा है पुराने बंधे हुए उसके साथ, अभी बंधा हुआ आवली के बाद उदय, आवली के पहले थी उदय। आवली किसको कहना, अभी हमने देखा उदय के समय से लेकर आवली प्रमाण जो काल है, एक समय में एक निषेक, आवली प्रमाण काल तक जितने निषेक है उसका नाम है उदयावली। एक बार उदयावली में निषेक का प्रवेश होता है, अब वो वहां से कुछ परमाणुओं का उत्कर्षण हो गया, ऊपर चढ़ गए, ऐसा नहीं होता। उदयावली के अंदर भी ऊपर से नीचे आना ऐसा कुछ नहीं होता है। उदयावली में आने के बाद उसमें संक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि प्रश्न संक्रमण के बारे में है, उसकी बात हम करें। संक्रमण का अर्थ होता है, एक होता है प्रकृति संक्रमण, एक प्रकृति अन्य रूप हो जाना, जिसे क्रोध है वो मान माया लोग रूप होना, उसको भी संक्रमण कहेंगे। एक संक्रमण होता है अनुभाग का टर्न होगा, उसको भी संक्रमण कहेंगे। स्थिति की अपेक्षा कम ज्यादा होना, उसको भी कभी संक्रमण नाम देते हैं। यहाँ संक्रमण कहने से यूजुअली प्रकृति जो अन्य रूप होती है उसको संक्रमण कहेंगे। यहाँ जहाँ विशेष बात है उसकी बात है, वो संक्रमण कहाँ होता है, उदयावली के ऊपर, क्योंकि अभी जो कुछ प्रश्न है ना उसमें जो और क्या मैं सूचित कहना चाहती हूँ, वो प्रश्न के जवाब में मैंने ये उत्तर निकाला है। तो ये प्रश्न ये यहाँ था कि अनंतानुबंधी का संक्रमण उदयावली में आने के पश्चात होगा या पूर्व, ये इनका प्रश्न है। देखो अभी जो ये संक्रमण की बात क्यों पूछे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब औषमिक सम्यक तो होता है, प्रथम औषम हुआ तो मिथ्यात्व में जब था तो मिथ्यात्व का भी उदय चल रहा था, अनंतानुबंधी का भी उदय चल रहा था। जब ये जो प्रथम प्रथमोक्षम हुआ और और मिथ्या तो कर्म में जो बीच में अंतर पड़ा, अंतर के बाद जो ऊपर के परमाणु थे वो अपनी जगह कायम रहे, उदय में नहीं आए, तो उसको हमने कहा प्रशस्त उषा। उस समय अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन थी? तो अनंतानुबंधी उदयावली में भी थे, उदय के समय से लेकर उसकी निषेक रचना थी, पर उदय के एक समय में वो टर्म हो गए। उसका नाम है थ्यूबुक संक्रमण या थ्यूबुक संक्रमण। उसको संक्रमण में नहीं गिनते, उसका स्पेशल नाम ही है थ्यूबुक संक्रमण। एक समय के लिए वो टर्न होकर उदय में आता है, एक ही समय में टर्न होकर अन्य रूप से उदय में आता है। इसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। जब सम्यक तो प्राप्त हुआ है, वो प्रथम उपशम हो या वेगत सम्यक दर्प हो, वहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। तो उदय नहीं है तो उसके परमाणु का हुआ क्या? तो एक समय जो उदय के समय है, उस एक ही समय में वो टर्न होकर अन्य रूप से उदय में आता है। अन्य रूप यानी चौथे गुणस्थान वाला है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से आएगा। कोई पांचवें गुणस्थान में है, उसके अनंतानुबंधी है, वो प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। कोई मुनिराज है, उनके अनंतानुबंधी का क्या होगा? वो संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। इसको कहेंगे थ्यूबुक संक्रमण। उस थीबुक या थीबुक, थ्यूबुक ये प्राकृत शब्द है, थीबुक ये संस्कृत शब्द है। जैसे हमारा हुआ था ना ड्रॉप इरीगेशन, एक एक ड्रॉप आता है, जैसे एक एक निषेक जो है वो टर्न होकर उदय में आता है। इसको कहेंगे थीबुक संक्रमण। वो रेगुलर संक्रमण उसमें ये नहीं गिनते। संक्रमण की जहाँ बातें आती है उसको संक्रमण में नहीं गिनते, वो एक समय वाला टर्निंग हो जाता है, उदय में आता है। उसका नाम है अप्रशस्त उपशम। क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे गए थे कि प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम समझा, ये समय में है ना, ये उदयावली में तो आए हैं अनंतानुबंधी। जब प्रथम उपशम सम्यक तो हो रहा है या वेदक समय दृष्टि है, तो उसमें अनंतानुबंधी के निषेक पड़े हैं कहाँ? दूसरे समय से लेकर। पर वो अभी वर्तमान समय होते होते अप्रत्याख्यान आदि रूप होकर उदय में, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। अब ये यहाँ यही प्रश्न पूछा था, अप्रशस्त उपशम विषय परी ने समझा हुआ है, यानी अप्रशस्त उपशम होता है नहीं, क्या होता है उसमें? अप्रशस्त उपशम में वो बीच में गैप भी कुछ नहीं होती। अनंतानुबंधी में ऐसा जिसको कहेंगे अंतर करना और फिर बाद में उपशम करना, ये प्रोसेस अनंतानुबंधी में नहीं होता, दर्शन मन में होता है। चारित्र मन की अनंतानुबंधी को छोड़कर अन्य प्रकृतियों में होता है, केवल अनंतानुबंधी में वैसा प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा ही प्रकृति का स्वभाव है, और प्रकृति का स्वभाव आपके क्यों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा बार बार धवलादि ग्रंथों में लिखा हुआ है। वह प्रश्न पूछते हैं शिष्य, ऐसा क्यों? ऐसा ही प्रकृति का स्वभाव है। क्योंकि पहले बार आत्मसम्मुख परिणाम किए तो प्रथम उपशम सम्यक हुआ, बाद में वेदक समय दृष्टि हुआ, फिर आत्मसन्मुख परिणाम हुए तो अनंतानुबंधी की विषय में जना हुई, और बाद में फिर आत्मसन्मुख परिणाम किए तो किसी के क्षायिक समय दर्शन हुआ, किसी को द्वितीय उपशम हुआ। ऐसा क्यों? उसकी जैसी विशुद्धि होती है वैसा कार्य होता है, और जहाँ जैसा कार्य होता है वैसा वो कर्मों का वैसा स्वभाव है। जीव ने क्या किया? जीव ने अपना सन्मुख किया बस। हाँ, थीबुक संक्रमण और अप्रशस्त उपशम में कह सकते हैं वैसी ही बात है, क्योंकि कभी कभी वो उदय में नहीं आना है को भी अप्रशस्त उपशम कह देते हैं। वो पड़ा है जो ऊपर के सत्ता में पड़ा है उसको भी अप्रशस्त उपशम कह देते हैं, क्योंकि वो कहीं कुछ अपेक्षा से बात आती है। परंतु जहाँ वो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा है, अभी उसकी स्थिति पूरी हुई है, वो तो अन्य रूप टर्न होकर उदय में आता है, ये उसका प्रोसेस है रेगुलर। ऐसे भी है ना, जब सम्य दर्शन होता है तो हमने जो पुराने पाप किए थे और कर्म बांधे थे उसका क्या होगा? आपने एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय आदि बांधी है, अपर्याप्त नाम कर्म बांधा है, और वो निगोल संबंधी साधारण नाम कर्म बांधा है, उसका क्या होगा? वो तो अन्य उसकी स्वजाति रूप से होकर हमारी पंचेंद्रिय जाति रूप से होकर उदय में है। कैसा होती वो संक्रमण? हमने देवगति भी बांधी है, नरक गति भी बांधी है, पहले में तिरेच गति भी बांधी है, हमारा मनुष्य गति का उदय चल रहा है। तो मनुष्य गति का उदय चल रहा है तो बाकी गतियों का क्या हुआ? वो उदय के समय में मनुष्य गति रूप से होकर उदय में आ रही है, उसको कहेंगे थ्यूबुक संक्रमण। बहुत सारी प्रकृतियों में ऐसा हो जाता है। अब प्रश्न अन्य जो है उसकी बात देखते हैं। एक प्रश्न है अप्रशस्त उपशम और विसंयोजनों में क्या डिफरेंस है? विषय योजना अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। अनंतानुबंधी की विषय योजना का अर्थ होता है सत्ता में से नष्ट हो जाना, क्योंकि सत्ता में कितना पड़ा है, जिसे समय दर्शन प्राप्त हुआ उसके तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण सत्ता में निषेध पड़े अनंतानुबंधी के लिए सभी कर्म। तो सत्ता में से एक अंतर्मूल में परिपूर्ण नष्ट होना, उसमें बहुत सारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो अनंतानुबंधी पर विशेष कार्यकार है, सभी कर्मों में वो बातें नहीं होगी। तो अनंतानुबंधी सत्ता में से समूल नष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विषय योजना। क्षायिक समय दर्शन होने के पहले भी वो कंडीशन होती है, द्वितीयोक्षम होने के पहले भी वो विषय योजना होती है। वो क्या होता है, वो अपना विषय वहाँ से चलेगा। और अप्रशस्त उपशम तो रेगुलर जो औषमिक समय दृष्टि के या वैदिक समय दृष्टि के अनंतानुबंधी उदय में नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़ा रहा है, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। ये दोनों की डिफरेंस है। एक प्रश्न है, ये है परमाणु को वर्ग क्यों कहते हैं। अभी हमने देखा कि अनुभाग को बताने वाले जो शब्द आते हैं उसमें वर्ग वर्गणा स्पर्धक ऐसे शब्द आते हैं, तो परमाणु को वर्ग क्यों कहा। देखो एक ये सामान्य टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं, जैसे आपके गणित के कुछ शब्द होते हैं ना, ऐसे वर्ग क्या बताता है, वर्ग यानी अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह। अभी हम किसकी बात करें, कर्मों की, इसलिए कर्मों के अविभाग प्रतिच्छेद किस में हो गए, तो परमाणु में, जो कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है उसकी बात है। कारमाण वर्गणा तो रॉ मटेरियल था, जीव के परिणामों के कारण वो अपनी योग्यता से, पर यहाँ जीव का निमित्त है, वो कारमाण वर्गणा वो कर्म रूप परिणमित हो गए। अब उस कर्म का जो एक एक सिंगल परमाणु है उसमें अपनी अपनी फलदान शक्ति है, इसलिए उसका नाम है वर्ग। केवल कर्मों के लिए वर्ग शब्द ऐसा आता नहीं है, जहाँ जहाँ अविभाग प्रतिच्छेदों की बात आती है, जब आगे चलकर जब कभी योग का प्रकरण आएगा तो जीव का योग भी, जीव का योग किस में, जीव के प्रदेशों में, योग नाम का जो कंपन वाली जो शक्ति है, जो भाव योग द्रव्य योग की बात है, वो शक्ति भी किस में नापते हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में। वहाँ तो जीव प्रदेशों को भी एक प्रदेश को एक वर्ग कहेंगे, यानी वो केवल कर्मों के लिए आता ऐसा नहीं है, वो एक टर्मिनोलॉजी है। अभी हम कर्मों की बात कर रहे हैं, इसलिए कर्मों के लिए एक कर्म परमाणु इज इक्वल टू एक वर्ग, जिसमें जिसमें समान शक्ति है उस सभी परमाणु के पुंज को हम वर्गणा कहेंगे। एक एक अविभाग प्रतिच्छेदों से अनंत जो वर्गणा होती बढ़ती हुई उसको हम स्पर्धक कहेंगे। अब ये विषय जब आएगा तब उसकी और चर्चा होगी। हाँ, ये सदवस्था रूप उपशम यानी सत्ता में पड़े रहना उदय में नहीं आया, उसी को कहेंगे अप्रशस्त उपशम। वो देखिए सदवस्था रूप उपशम को, या सत्ता में पड़े रहना उदय में नहीं आना, वो बात देखिए। एक ऐसे उदीर्ण और उत्कर्षण में क्या अंतर है। उदीर्ण हमने देखी थी उदयावली के ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उसकी स्थिति घटकर उदयावली में आकर मिलते हैं, उसको कहेंगे उदीर्ण। उत्कर्षण का अर्थ होता है उदयावली के ऊपर के निषेकों में से, जो उदयावली में एंटर हुए ऊपर नहीं जा सकते, उदयावली के ऊपर के किसी भी निषेक के से परमाणु ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर चले जाने के लिए कंडीशन क्या थी, नया बंध होना चाहिए, और उसकी जितनी शक्ति स्थिति है वहां तक ऊपर चढ़ते हैं तो उसको कहेंगे उत्कर्षण। उत्कर्षण यानी स्थिति का बढ़ना, अवकर्षण यानी स्थिति का घटना। ये ऐसा अनुभाग में भी घटना बढ़ना होता है, पर अनुभाग में हम ऊपर नीचे ऐसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अनुभाग की रचना अलग बतानी है और निषेक की रचना यानी स्थिति की रचना अलग होती है। जैसे स्कूल में हाइट वाइज आपको लाइन लगानी है तो अलग लगेगी, और मार्क्स जैसे मिले वैसे 1, 2, 3 नंबर निकालना है तो उसकी लाइन अलग होगी, है ना। अल्फाबेटिकल बताना है तो उसके नंबरिंग अलग होते हैं। ऐसे यहाँ जब स्थिति की बात करेंगे तो निषेक 1, 2, 3, 4 अलग रचना होगी, अनुभाग की बात करेंगे प्रत्येक निषेक में अलग सभी अनुभाग पाए जाएंगे। ये बहुत महत्व की बात है, नीचे के निषेकों में कम अनुभाग और ऊपर में ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, वो वर्गणा कहते हैं, समान अनुभाग वालों को वर्गणा कहते हैं, पर वो निषेक के साथ उसकी कंपेयर मत करना। हाँ, वर्गणा है और अनेक वर्गणाओं को स्पर्धक कहेंगे, उसकी पूरी पहली वर्गणा ने मिनिमम अनुभाग, ऊपर की वर्गणा ने ज़्यादा अनुभाग और ऊपर के ने अधिक अनुभाग, पर वो ऊपर नीचे स्थिति की अपेक्षा नहीं है। अनुभव की अपेक्षा, स्थिति में उसकी कंपेयर मत करना। स्पर्धक पूरे वर्गणाओं का एक स्पर्धक है, ये वर्ग भी, वर्गणा भी और स्पर्धक भी, ये सभी अनुभाग को बताने वाले हैं, क्योंकि वो अनुभाग की बहुत अनंतों में होते हैं, उसको बताने के लिए वो स्पर्धक एक हमने यूनिट बनाया, यूनिट बनाया उसको। ऊपर और नीचे जो स्थिति की अपेक्षा बताते हैं, नीचे ऊपर ये हमारी भाषा है, वर्तमान समय को नीचे बताते हैं, भविष्यकालीन जो उदय में आने वाले निशे के उसको ऊपर बताते हैं, और वो निशे को उनको आड़ी लाइन में बताया जाता है। उदीर्ण उत्कर्ष ये हो गया, प्रशस्त अप्रशस्त उपशम को भी हमने बता दिया, तो मेरे ख्याल से अनेक प्रश्नों के उत्तर आ गए। ये जो अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना वगैरह उसकी बात अभी अपनी चलेगी कुछ। देखो पुस्तक में 152 पृष्ठ है, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, चारित्र मोह उपशमना अधिकार्य है। ₹205 की जो टीका है वहां से अभी हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर गाथा के ऊपर जिन्होंने उन्होंने एक लाइन लिखी उसको पढ़ते हैं। कहते अब उपशांत किए है, उपशांत किए ने भी उदय के अयोग्य किए, उपशांत हुए ने वो ठंडे पड़ गए, उदय में नहीं आ रहे, उपशांत किए है सकल दोष जिन्होंने, ऐसे उपशांत कषाय भीतरा। ये कौन से गुणस्थान का नाम है, कैसे वो वितराग, कितने वितरागे, जितने अरिहंत भगवान वितरागे उतने एक अंतर्मुक्ति। अभी छद्मस्तर है, जैसे 12वें गुणस्थान वालों ने क्या किया, शील कषाय क्षय कर दिया, और इन्होंने क्षय नहीं किया, 12वें गुणस्थान वालों के भी उदय में नहीं है और इनके भी उदय में नहीं है, परंतु इनकी सत्ता में सभी पड़े। चारित्र मोह जो अनंतानुबंधी को छोड़ उसका क्या क्या वो बाद में देखेंगे, बाकी सभी कषाय सत्ता में पड़े, अप्रत्ययकांत प्रत्ययकांत संयोजन सब है, आश्रय रति रति वगैरह वो सभी सारे सत्ता में पड़े हैं, वो उदय में नहीं आए ऐसी कुछ कंडीशन हो गई। इसको कहते हैं उपशांत कषाय वीतरा, पूर्ण वीतरा भी है, कुछ भी उदय रूप नहीं है, तो यहाँ जीव में कुछ भी वो उस भाव रूप परिणमित नहीं है, वो कर्मों के कारण जीव के भाव हुए ऐसी बात नहीं, ये जीव के अपने पुरुषार्थ से उसने अपने समस्त कषाय उदय में नहीं हो गए, ऐसी कुछ वहाँ कंडीशन हुई है एक अंतर्मुख के लिए, उसको कहेंगे उपशांत कषाय वीतरा, उनको प्रणाम करके उपशम चारित्र का विधान करते हैं। लोगों की इसके बारे में बहुत भ्रमणा है। हम एक बार कहीं दशरक्षण में गए थे, छोटा सा गांव कौन सा था वो, तो वहाँ किसी महिला ने हमको एक प्रश्न पूछा चिट्ठी कि हम जानते हैं कि जो 11वां गुणस्थान है उपशम श्रेणी उसमें से जीव गिरता है, तो बिचारे मुनिराज क्या लिखा, ये कौन कह रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि, क्या कह रहे हैं बिचारे मुनिराज, वो उपशम श्रेणी चढ़ते ही क्यों है, क्या उनको मालूम नहीं है, वो भी एक अभूतपूर्व पुरुषार्थ है, वो हम सोच समझ कर उपशम करना है कि क्षय करना है ऐसा कुछ नहीं है, जीव बस अपने स्वरूप में मस्त है और वहाँ अपने आप वहाँ कुछ कुछ ये पूर्ण वितराग जितनी स्थिति बन जाती है। अंतर्मुक्ति के लिए भी बहुत सारे कर्मों का वो जो जिसको भी गुणश्रेणी रूप से खिलना वगैरह बहुत सारी बातें होती है, यानी ये भी एक अभूतपूर्व पुरुषार्थ है। अब उसने क्षपक्षणी क्यों नहीं चली उसके बारे में अनेक बार हम बाद में देखेंगे, आयु का बंद किया हुआ होगा, उसके सहनन की कोई उत्कृष्ट सहनन नहीं होगा, अभी उसके पर्याय में अभी मोक्ष दूर है, अभी क्या करेंगे हम, फिर भी उसने इतना पुरुषार्थ कर लिया, यानी ये कोई साधारण बात नहीं है कि उपशम श्रेणी चढ़कर 11वां गुणस्थान प्राप्त कर, वो आता है ना जिद्द मोह का 32 गाथा में आती है ना वत्सम निशा, तो वो तो हमको याद है बड़ा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको। अभी डायरेक्ट टीका अर्थ है क्योंकि वो तो गाथा गई वहाँ टीका में अर्थ होता है, उपशम चारित्र के सन्मुख हुआ। देखो उपशम चारित्र नाम दिया, उपशम सम्यक तो हमने देखा था, अभी बात की जो मिथ्या दृष्टि है वो अनंतानुबंधी और दर्शन मोह कर्मों का उपशम करके जो सम्यक प्राप्त करता है उसको कहेंगे प्रथमोपशम, वो मिथ्या तो में से उपशम किया है इसलिए प्रथमोपशम, और जो सातवें गुणस्थान वाला मेरे राज है वो जब उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जब फिर उन्हीं तीन दर्शन मुनियों का उपशम करके श्रेणी चढ़ते हैं जो वेदक समय दृष्टि है, वेदक यानी क्षोभम समय दृष्टि, वो श्रेणी सर्वोपम समय के साथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते, तब दर्शन मुनि का फिर दोबारा उपशम करके उसका बड़ा अंतर करते हैं तो उसको कहेंगे द्वितीय उपशम समय। ये सम्यत्व में हमने उपशम विशेषण लगाया, ये सम्यत्व के भेद हो गए, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम ये सम्यत्व के भेद हो गए। ऐसा ही जो चारित्र मुनि है ना, अनंतानुबंधी को तो वो सत्ता में से पहले नष्ट करेगा जिसको हम विसर्जो ना कहेंगे, और उसके बाद अनंतानुबंधी की जो 21 प्रकृतियां बाकी है उस सब में ऐसा अंतर करेगा और अंतर करके उसका उपशम हो जाएगा, उसकी सारी प्रोसेस अब यहाँ हम देखने वाले हैं। यहाँ कहते हैं उपशम चारित्र के सन्मुख, सन्मुख ने भी उसके प्रति उद्युक्त हुआ है, ऐसा वेदक समय दृष्टि जी, वेदक समय दृष्टि को या क्षोभम समय दृष्टि, तो वेदक समय दृष्टि किसको कहना? देखो हमने देखा था दर्शन मोहनी में अनादि से एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, जब पहली बार उसको सम्यक्त होता है उसको हम प्रथमोक्षम सम्यक्त कहते हैं, तो मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा घटकर हीन होकर उसमें से और दो प्रकृतियां तैयार होती, पहले मिथ्यात्व तो थी ही, कुछ परमाणु का अनुभाग घट गया तभी उस प्रकृति को कहेंगे सम्यक मिथ्या, इसको मिश्र मोहनी भी कहते हैं। कुछ परमाणु और अनुभवहीन हो जाता है तो उसकी प्रकृति को कहेंगे सम्यक प्रकृति या सम्यक मोहनी, पहले अकेले मिथ्यात्व थी, अब जब उसकी पहली बार समय दर्शन हुआ तो उसमें से और दो प्रकृति तैयार हुई, अब उसकी सत्ता में दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां, वो समय दृष्टि है उसकी सत्ता में दर्शन मोहनी की तीन और चारित्र मोहनी की तो टोटल 25 है ही है, कौन सी 25 है गिनाएंगे? हाँ पीछे बताना चाहते जरा सुनो, हाँ हाँ चार कषाय चार चौकी 16 कषाय, हाँ चार कषाय ने अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लो, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लो, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लो और संज्वलन क्रोधमान माया लो और नौ नौ कषाय, इतने उसके 25 है ना, तो सत्ता में है। प्रथमोक्षम समय तो प्राप्त किया तो की बात चल रही है, उसमें उदय रूप कितनी है प्रथमोक्षम सम्यक्त में, दर्शन मोहनी का उदय नहीं है प्रथमोक्षम की बात करें और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं, बाकी यथा योग्य उदय, ये प्रथमोक्षम सम्यक्त की हम बात करें। अब वो जो अंतर्मुहूर्त तक प्रथमोक्षम समय दृष्टि रहा बाद में वो वेदक समय दृष्टि हो जाता है, यदि वो मिथ्यात्व में या दूसरे में नहीं गिरा तो वो उसका सम्यक तो बना रहता है, तो उसको वेदक वेदक कहने के क्षोभम समय दृष्टि, तो इसमें पोजीशन क्या है? अनंतानुबंधी का तो उदय होता ही नहीं, उसका तो क्यूब संक्रमण से अन्य रूप से उदय होता है, दर्शन मोहनी में क्या होता है तीन प्रकृतियां बनी है तो उसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं है क्योंकि नहीं तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, समय मिथ्यात्व का उदय में तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है, तो उन दो का उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं, वो तो दर्शन मुनि की है पर ऐसी माइल्ड हो गई है, ऐसी मंद है, ऐसा अनुभव घट गया है कि वो सम्यक को रोक नहीं सकता, सम्यक को बाधा नहीं डाल सकता, यानी उसका उदय भी हो और सम्यक तो बना रहा, उसको कहेंगे वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक यानी उसका अनुभव उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है दर्शन मुनि का होते हुए भी, यानी दर्शन मुनि का उदय चल रहा है, कौन सी दर्शन मुनि? सम्यक प्रकृति रूप होकर, बाकी दो सत्ता में है उसका भी वो त्यूक्त संक्रमण होकर सम्यक प्रकृति रूप से उदय आता है, वो भी दूसरे समय में पड़ी है वहां, जब वेदक समय दृष्टि है तो तीन रूपों में से सम्यक प्रकृति का उदय चलता है और अन्य दो एक एक समय में टर्न होकर उदय में आता ही रहता है जब तक वेदक समय पर चले, ये उसकी पोजिशन थी, दोनों उस रूप से हुए एक ही समय में, दोनों ही टर्न होकर उदय में आते, बाकी सत्ता में जो पड़ा है वो क्रम से जो दो रूप चलता है उसका संक्रमण वो बात नहीं आता, तो ये वेदक समय दृष्टि था। अब ऐसा वेदक समय दृष्टि जिसको समय प्रकृति का उदय है, तो समय प्रकृति का उदय तो उसमें कुछ माइल्ड उसका दोष है जो केवली गम्य होता है, जिसको हम कहते हैं चलमल अगाढ़ दोष, यानी ऐसा हो जिसको क्लियर ऐसा नहीं है कि उसके साथ वो श्रेणी चढ़ सके, इतना निर्मल नहीं है, तो श्रेणी चढ़ नहीं सकता क्योंकि उसमें कुछ दोष है। तो श्रेणी के सन्मुख हुआ जीव, यानी जो उपशम श्रेणी यानी चारित्रमों की उपशम ना करने वाला जीव है, अभी वो सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज है, अभी उनको श्रेणी चढ़नी है, तो उपशम श्रेणी वही जीव चढ़ सकते हैं, या तो क्षायिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि तो दर्शन मुनि ने अंतानुमति का सत्ता में से क्षय किया, नाश कर दिया, वो उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, या जिसने क्षायिक नहीं किया है तो क्या वो उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं? हाँ, परंतु वो वेदक सम्यक होने से दोबारा दर्शन होने की जो तीन, एक का उदय था और बाकी दो ऊपर भी दूसरे समय से लेकर पड़ी है सत्ता में, तीनों की सत्ता है, और वो तीनों में एक साथ ज्ञात कर देता है, उसको कहीं द्वितीय उपशम सम्यक, वो हम देखने जा रहे हैं, और वो द्वितीय तीनों में एक साथ ज्ञात करने के पहले, अभी तक अनंतानुबंधी की पोजीशन क्या थी? अप्रशस्त उपशम था, क्योंकि संक्रमण से उदय में आ रहा था, अब श्रेणी में वो भी नहीं चलेगा। तो अनंतानुबंधी का एक अंतर्मूर्त द्वारा सत्ता में से नाश कर देता है, उसको कहेंगे उसकी विसर्जना करता है। यानी जो वेदक समय दृष्टि जीव है, मुनिराज है, सातवें गुणस्थान वर्ती है, तो अभी उनके श्रेणी के सन्मुख होने के उनके परिणाम चल रहे हैं, ये कुछ सोच समझकर कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक बातें होती हैं। अभी मुझे विसर्जना करनी है, बाद में मुझे थोड़ा रुकना, ऐसी कोई बात वहां नहीं हो रही है, ये सहज ऐसा प्रोसेस है। क्या होता है तो हम कहेंगे जीव ने ऐसा किया, जीव ने वैसा किया, कहने की पद्धति है, ये भाषा से तो आप अभी परिचित होना चाहिए। तो यहाँ या फिर ये वाक्य पढ़ते, उपशम चारित्र के सन्मुख हुआ ऐसा वेदक समय दृष्टि जीव, तो उसने अभी दर्शन होने की तीन प्रकृतियों के एक साथ उसका अंतर करना है और उसको उपशमाना है, तो उसके पहले उसको अनंतानुबंधी को सत्ता में से नाश करना है, उसको कहते हैं पहले पूर्वोक्त विधान से। वो तो पूर्वोक्त विधान हमने शायद समय दर्शन के प्रकरण में देखा था, अभी हम फिर उसको दोबारा गौर करेंगे। हमें पूर्वोक्त विधान से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके, यानी श्रेणी के पहले वेदक समय दृष्टि द्वितीयोक्षम समय को प्राप्त करने के पहले की कंडीशन क्या है? अनंतानुबंधी की विसंजना करनी चाहिए, विसंजना ने सत्ता में से नाश करना है। ये विसंयोजना है ना, वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, और विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना है तो वो चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में वाला कोई भी कर सकता है। यहाँ श्रेणी के सन्मुख वाले जीव है इसलिए सातवा करता है, ऐसा द्वितीयोक्षम सातवें गुणस्थान वाला करेगा, परंतु मात्र अनंतानुबंधी की विसंयोजना कोई भी गुणस्थानवर्ती जीव कर सकता है। अरे सातवें नरक का नारकी भी जो समय दृष्टि वो भी कर सकता है, क्यों? कैसे होता है? आत्मसन्मुख परिणाम में होता है, वहां भी तीन करण परिणाम होते हैं। ये बार बार तीन करण परिणामों की बात आने वाली है। एक का नाम है अधः प्रवृत्त करण, उसी को अधः करण भी कहते हैं, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। उसमें क्या क्या बातें होती वो हम देखने जा रहे हैं, वो हम पहले जो पढ़ा था उसको निकाल के देखेंगे, अनंतानुबंधी की विसर्जना कैसी की। तो ये चौथे वाला अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, करता क्या है? तो आत्मसन्मुख परिणाम है उसका, तभी उसके तीन कर्म परिणाम होते हैं। ये अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का ना, इसको कहेंगे तीन कर्म परिणाम। ये तीन कर्म परिणाम क्या है? है तो जीव के आत्मसन्मुख परिणाम, जीव की विशुद्धि जिसको कहेंगे, वो अनंत गुणी बढ़ती है, और उसमें कुछ कार्य होते हैं। अभी वो परिणामों को कैसे समझाना, तो हम कर्मों की भाषा में समझाते हैं। तो कर्मों में ऐसा हुआ, कर्मों में अनुभव ऐसा बढ़ गया, ऐसा कम हुआ, प्रशस्त में ऐसा हुआ, अप्रशस्त में ऐसा हुआ, वो गुण श्रेणी हुई, गुण संक्रमण, जो कुछ है वो कर्मों में हम समझाएंगे। होता तो जीव में अपनी विशुद्धि अपने से बढ़ती है, कर्मों की अवस्था उसमें, हमें जीव के परिणाम बताना है तो हमने कर्मों में क्या क्या होता है उसकी अलग अलग यहाँ प्रोसेस बताएंगे। जीव में तो जीव ने आत्मसन्मुख परिणाम किए, बस इतना है। उसमें क्या हुआ? परिणामों में विशुद्धि इतनी बढ़ी। कैसी बढ़ी? तो कर्मों में ऐसी ऐसी अवस्था, हम बताएंगे कर्मों की तरफ से। कर्म कुछ नहीं कर रहा, या जीव ने कर्मों को उपशमाया, उसने संक्रमित किया, कहेंगे बात, यानी क्योंकि कथन में बार बार ऐसा नहीं करेंगे, एक बार कह दिया कि जीव की अवस्था जीव में, कर्म की अवस्था कर्म में, जीव ने कर्म को उपशमाया, एक कथन बारम्बार आएगा, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको, ये कर्णानियोग का कथन है, निमित्त का कथन है, निमित्त की भाषा ऐसी होती है, हमारी जिम्मेदारी। समझने की। अब यहाँ क्या कहते हैं कि अनंतानुबंधी का विसर्जन करके अंतर्मुहूर्त काल तक अध प्रवृत्त अप्रमत्त अर्थात स्वस्थान अप्रमत्त होता है। इसका अर्थ ये है जब श्रेणी के सन्मुख हुआ तो उसको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त। जब श्रेणी के लिए तीन करण परिणाम दोबारा करेगा, फिर से सुनना, अभी वो पहले सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उनको श्रेणी के सन्मुख होना है, पहले क्या करते हैं अनंतानुबंधी की विसर्जना करेंगे। कैसे करेंगे? तीन करण परिणामों के द्वारा। वो कैसे करते हो अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंतर्मुख कुछ नहीं होगा तो कहेंगे विश्राम करें, विश्राम ने अभी सो जाएंगे, थोड़े थक गए विसर्जन करके, ऐसी बात नहीं, कोई प्रोसेस नहीं होता तो कहेंगे विश्राम किए। फिर तीन करण परिणाम होंगे और तीन करण परिणामों के द्वारा द्वितीयोक्षण सम्यक होगा। द्वितीयोक्षण सम्यक होने के पश्चात भी हजारों बार छठा सातवां गुणस्थान चलेगा और फिर श्रेणी चलेगी। श्रेणी के लिए फिर तीन करण परिणाम होंगे। हर एक के अपने अपने करण परिणाम अलग, उनके नाम सेम है, उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उसके नाम भी सेम है, परंतु अन्य अन्य कर्मों पर उसका जो कुछ वहाँ बातें होती है उसकी कंडीशन ये तो हम बताते जाएंगे कहाँ क्या होता है। अभी हमको अनंतानुबंधी की विसंयोजना या क्या है वो उसको देखेंगे। आपने शायद वो तत्वार सूत्र का सूत्र सुना है, पढ़ा भी है, याद भी है किसी को, क्यों वो जो असंख्यात गुणा निर्जरा वाले के स्थान बताए ना, मालूम है? हाँ कौन बताना चाहते? हाँ बोलो बोलो, कुछ सुन लीजिए। हाँ समय दृष्टि, यानी वो क्षम समय दृष्टि लेना, जो तभी जो गुणश्रेणी जितना करने जितने उसकी गुणश्रेणी रूप से खिलते हैं परमाणु, उसके बाद श्रावक यानी पंचम गुणस्थानवर्ती की गुणश्रेणी यानी अधिक प्रमाण में होते, फिर विरत यानी मुनिराज वो कितनी, उससे भी असंख्यात गुना निर्जरा होती है, उससे भी अनंतानुबंधी का विसंयोजक निर्जरा ज्यादा करता है। किससे? मुनिराजों से। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जितनी कर्मों की निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा भले चौथे गुणस्थान वाला भी विसंयोजना क्यों न करे, क्योंकि वहाँ कितने परमाणु फिरते उसका हिसाब है, ख्याल में है? और ये सब परिणाम आत्मसन्मुख अवस्था में होते हैं, इसलिए ऐसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो मुनिराज छठे सातवें में, ये तो चौथे गुणस्थान वाला, ऐसी कोई वहाँ बात नहीं है। कितने परमाणु खिलते हैं, कितने असंख्यात गुण है, उसका यहाँ हिस्सा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 98 निकाल, इसी पुस्तक का पेज 98। वहाँ दर्शन मोहन की क्षपना के पहले जो अनंतानुबंधी की विसर्जना की थी वो तो चौथे वाला भी करता है ना, क्योंकि क्षपना तो चौथे वाला भी करता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना, देखो पेज नंबर 98 ठीक है, 112 की दर्शन मोह की क्षपणा के पहले तीन करण विधान द्वारा। ये करण विधान यानी इनके नाम तो ये है, कौन से? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवर्तिकरण। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के उदयावली के बाह्य जो सर्वनिषेध, यानी उदयावली जो उदय के सन्मुख जो है उसको छोड़ दो, तो ये दर्शन होने की क्षपणा करने वाला या अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला कौन सा जीव है? समय दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? समय दृष्टि, समय दृष्टि है ना। विसंयोजना कौन करेगा? विसर्जन। देखो यहाँ क्या कहा, दर्शन होने की क्षपणा करने का, दर्शन होने की क्षपणा कौन करेगा? वे जब समय दृष्टि करेगा। और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन करेगा? वेदक समय दृष्टि करेगा। उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो रहा है फिर भी उदयावली कहाँ है? क्यों? उदयावली में है, उदय के समय में वो त्यूक संक्रमण हो रहा था, उदयावली में भी है, पर उदयावली में एंटर हुए है, अभी उसका नाश होना जो ये जो होगा यहाँ पर संक्रमण से ही नाश होने वाला है, वो प्रोसेस उसमें नहीं होगा, वो एक एक समय वो त्यूक संक्रमण होकर नष्ट होने वाले हैं। उदयावली के ऊपर जितने निषेक पड़े, कितने पड़े? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, उन निषेकों का क्या होगा? वो सारे के सारे परमाणु एक अंतर्मूर्त द्वार, अभी उसमें भी बहुत सारे स्थिति कांडक होते हैं, जो एक एक लॉट है जो कांडकों का, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण या संख्यात विभाग प्रमाण, उतने के उतने निषेक अन्य रूप से होते, अभी चौथे गुण स्थान वाला है तो वो वहाँ बंधने वाले कौन से, अप्रत्याखन प्रत्याखन संज्वलन रूप हो जाते, वहाँ बंधने वाले भी कंडीशन उसमें संक्रमित हो जाते। अभी सातवें गुण स्थान वाला अगर अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है तो अनंतानुबंधी वहाँ कौन सी बन रही है, संज्वलन बन रही है, पुरुष वेद बन रहा है, उसमें वो संक्रमित हो जाए तो संक्रमण करके उसको नष्ट कर देगा। फिर पढ़ दे इसको, दर्शन मौखिक क्षपणा के पहले तीन करण विधान द्वारा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के उदयावली के बाह्य जो सर्वनिषेक, सर्वनिषेक शब्द है, अप्रशस्त उपशम में पहला उदय का एक निषेक तन होकर उदय में आया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना में पूरे की पूरे सत्ता वाले निषेक संक्रमित होकर नष्ट हो जाते, ऐसे हवा में गुप्त नहीं हो जाते हमेशा। जो देखो जो बंधे हुए परमाणु वो उदय में आकर ही जाएंगे, अपने रूप से आते हैं पर रूप से आते वो बात अलग, अनंतानुबंधी नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे तो अप्रत्याखन प्रत्याखन संज्वलन रूप हो रहे, अगर मुनिराज विसंजना कर रहे हैं तो संज्वलन रूप हो रहे, वो ऐसे ही बिना उदय के नहीं जाएंगे, वो संज्वलन रूप होकर संज्वलन रूप से उदय में आकर चले जाएंगे, वो बात अलग है। कोई भी कर्म जो बंधा हुआ है वो फिर के ही उदय में आ ही जाएगा, अपने रूप से आएगा या पर रूप से उदय में आकर चला जाएगा। हाँ जो देखो संक्रमण में भी ये रूल है, जैसे हमने देखा उत्कर्षण में बंधने वाले में बंध होना चाहिए तब उत्कर्षण होता है, संक्रमण में भी जो जिसको हम हमारे पाप कर्म पुण्य में संक्रमित हो गए तो उस समय आप पुण्य बंध रहे हो तो पुण्य में संक्रमित हो जाएगी, पाप बांध रहे हो तो पाप पुण्य के परमाणु पाप में संक्रमित हो गए। यहाँ अनंतानुबंधी का संक्रमण होकर नष्ट हो रहा है उसके हम विसंजना करें तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो रहा है यानी संक्रमण हो रहा है किसमें, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और जो नौ कषाय वहां बंध रहे हैं उसमें, तो बंधने वाले में संक्रमण तो कहां कितनी प्रकृतियां बंधी इसका भी नॉलेज होना चाहिए, चौथे गुणस्थान वाले क्या बनते हैं बांधते हैं इसके लिए वो बंध विच्छुति हमने सीखी थी है ना, तो जो वहां बनती है उसमें संक्रमण होता है। ये समय दृष्टि है वो पुरुष वेद बांध रहा है, नपुंसक वेद स्त्री वेद का बंध नहीं कर रहा है तो पुरुष वेद में संक्रमित हो गए, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन में संक्रमित हो गए चौथे गुणस्थान वाला करता है। मुनिराज अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं तो वहां तो संज्वलन का बंध है, संज्वलन में संक्रमित होकर नष्ट हो जाता है। तो विसंयोजन करते हुए अनिवृत्तिकरण के अंत समय में नियम से विसंयोजन करता है बारह कषाय नौ नौ कषाय रूप परिणाम आता है, ये तो सामान्य कथन है कि नौ नौ कषाय, क्योंकि नौ नौ कषाय बनते ही नहीं, वहां पर बंधने वाले में संक्रमण होता है क्योंकि पुरुष वेद ही बंधेगा अन्य दो वेद नहीं बंधेंगे, समय दृष्टि के पुरुष वेद का ही बंध है। यहाँ कहते असंयत देश संयत प्रमत्त या अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती, यहाँ तो क्षायिक समय द्वारा प्रोसेस था इसलिए चारों गुणस्थान वालों को दिया, हमारा द्वितीयोक्षम करने वाले तो मुनिराज है वहां तो सातवें गुणस्थान में ये प्रोसेस होगा। वेदक समय दृष्टि जीव पहले अधकरण करता है, ये तीन करण में से पहले करण का नाम है अधकरण, उसका विधान प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के ग्रहण में कहा वैसा जानना है। तो वहां क्या देखा हमने अधकरण में क्या क्या होता है, चार बातें होती है, जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध 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 होते हैं, वहां तो प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ता चला जाता है, अप्रशस्त ने पाप कर्मों का अनुभाग किसका सत्ता में पड़े हुए वो घटता चला जाता है, कितना घटता है अनंत गुणा ही नहीं होकर घटता चला जाता है, इस तरह से उसकी जो कोई वहां बातें होती है और स्थिति बंध घटते चला जाता है जिसको स्थिति बंध अवसर में ये बातें वहां अधकरण में होती है, वैसे ही यहाँ पर भी होती है। ये सामान्य कथन जो है अधकरण ये सामान्य टर्मिनोलॉजी है, वहां प्रति समय भी क्या क्या होते हैं वो देखते, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ता है यानी अधकरण में तो अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है, सभी स्थिति तो सभी कर्मों की घटती है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ता है और प्रशस्तों का अनुभाग घटता है। देखो स्थिति घटेगी सबकी प्रशस्त अप्रशस्त, अनुभाग घटेगा अप्रशस्त का बढ़ेगा प्रशंसा, तो आपके लिए फेवरेबल है ना। पुण्य कम बंधा था वो अधिक मात्रा में उसका फल मिलेगा, पाप ज्यादा बांधे थे वो तो हीन होकर उदय में आएगा या सत्ता में पड़ा रहेगा। अब कहते हैं उसको समाप्त करके यानी अधकरण हो गया, अपूर्वकरण को प्राप्त होता है। जहां जहां अपूर्वकरण नाम के जो परिणाम होते हैं वहां चार बातें होती हैं, इसको भी डिटेल में हम देखने वाले हैं बातें। एक है गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक भाग और अब अनुभाग कांडक घात, ये चार कार्य होते हैं। अभी इसका अर्थ देखते हैं। एक गुणश्रेणी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमने बताया गुणश्रेणी रचना हुई, गुणश्रेणी संक्रमण हुआ, गुणश्रेणी रूप से उदय में आता है वगैरह वगैरह, उसका अर्थ क्या है। गुणश्रेणी ने, श्रेणी ने पंक्ति लाइन्स, और गुण यानी गुणित प्रमाण। तो गुणित प्रमाण में पंक्ति युक्त जो रचना होती है उसका अर्थ क्या है, हमने देखा था ना आकर्षण वगैरह होते रहते हैं। अब यहाँ जीव के परिणाम कैसे, आत्मसन्मुख परिणाम चले, तो आत्मसन्मुख परिणाम कर रहा है अनंतानुबंधी की विषय में, पर आयु कर्म को छोड़कर सातों ही कर्मों में ऐसी गुणश्रेणी की रचना है। यानी सातों कर्मों में क्या होगा, अपकर्षण होकर नीचे आने वाले परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा बढ़ जाएगी, यानी असंख्यात गुणा परमाणु का अपकर्षण होगा। और क्या होगा, वो नीचे जो रेगुलर जो ऐसी हम निषेक रचना बताते थे, तो उसमें विशिष्ट संख्या में जो कोई निषेक है जिसको हम कहने जिसमें वो गुणश्रेणी रूप रचना होने वाली है, तो उसमें सबसे नीचे जो निषेक है उसमें थोड़े परमाणु, दूसरे निषेक में असंख्यात गुणे, तीसरे में असंख्यात गुणे, चौथे में उससे असंख्यात गुणे, इसलिए कुछ निषेकों में ऐसी वो असंख्यात गुणा रूप से रचना हो गया, उसको कहेंगे गुणश्रेणी। ये पहले समय में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अपकर्षण होकर इतने परमाणु अधिक परमाणु नीचे आए, वो ऐसे गुणित प्रमाण में कुछ निषेकों में दिए। दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे परमाणु नीचे आते हैं और वो उन्हीं परमाणु और असंख्यात गुणा क्रम से दिए जाते हैं और उसकी संख्या बढ़ती है। तीसरे समय में और उससे अधिक असंख्यात गुणा परमाणु आते हैं तो उसमें और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बाय दैट टाइम ये जो गुणश्रेणी रूप से जो रचना हुई थी वो उदयावली के ऊपर हुई थी। जब वो एक 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 करके उदय में आने लगेंगे तो उदय में कितना उदय होगा, अभी हर समय इतना 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 बढ़ते बढ़ते वो निषेक कितना बड़ा होगा, अब उनकी निर्जरा चलेगी। तो पहले समय में जितनी होगी उससे दूसरे समय में असंख्यात गुना, तीसरे समय में असंख्यात गुना, उसको क्या कहेंगे, वो असंख्यात गुना निर्जरा भी चालू हो जाएगा। तो ये गुणश्रेणी ये रचना होती है, फिर उसका उदय में जब आएगी तब गुणश्रेणी रूप से उसका उदय आएगा। तो जहाँ विशुद्धि और अधिक होती है, जैसे अभी हमने देखा जब चौथे गुणस्थान में जीव जाता है उससे पांचवें गुणस्थान वाले की गुणश्रेणी असंख्यात गुना कहा मुनिराजों की, उससे असंख्यात गुना है, तो गुणश्रेणी रूप से जिसकी लंबाई कहती जितने निषेकों में वो गुण प्रमाण में रचना होती है, तो चौथे गुणस्थान वाले की गुणश्रेणी की लंबाई ज्यादा है, पांचवें वाले की छोटी है, छठे सातवें वाली की और छोटी, परंतु उसमें परमाणु असंख्यात गुणा, यानी कम निषेकों में असंख्यात गुणा मान लिया जाता है। जैसे किसी के पांच पुत्र है तो पिताजी की संपत्ति किसमें बटेगी, पांच में, और दो ही है तो कितनी बटेगी, दो में, तो मान किसको मिलेगा ज्यादा,
दो वाले।
ऐसे गुणश्रेणी जिसकी लंबी बड़ी है अनेक निषेकों में गुणित प्रमाण में तो उसमें प्रति निषेक कम लिए जाए, और जहाँ गुणश्रेणी की लंबाई छोटी होती है वह अधिक होगा, और केवल लंबाई छोटी नहीं होती उसमें जो अपकर्षण होकर परमाणु आते वो अधिक प्रमाण में आते, क्यों, जीव की विशुद्धि ज्यादा, विशुद्धि ज्यादा है ना, क्या उतने अंतरंग में उतनी एकाग्रता अधिक है, उसके कारण ये बात सहज रूप से होती है, उसको कर्मों में कुछ नहीं करना है, ये तो ख्याल में रखना है। तो ये हो गई गुणश्रेणी। अपूर्वकरण जहाँ परिणाम है जीव के परिणाम और अधिक विशुद्ध विशुद्ध, यानी उसकी निर्मलता हो गई तत्व ज्ञान संबंध, केवल शुभभाव रूप में विशुद्धि नहीं लेना, कहेंगे विशुद्धि किसको कहते तो मंद कषाय को कहेंगे, पर ये कैसी विशुद्धि है, तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता है, केवल वो मिथ्या तो चलता रहे और हमने शुभभाव किया और हमारी विशुद्धि बढ़ी उसकी बात यहाँ नहीं चलती। जहाँ यहाँ तीन करण परिणामों में जहाँ जहाँ विशुद्धि की बात आती है वहाँ वो परिणामों की निर्मलता तरफ उसकी विशुद्धि की बात अधिक रूप से उसकी भी बात है, क्योंकि कषाय तो मतलब हो ही रहेगा वहाँ, क्योंकि उसका अनुभव तो ही रहा है तभी अप्रशस्त कर्म होगा। तो ये हो गई गुण श्रेणी। गुण संक्रमण बाद में लेते, जरा स्थिति कांडक भाग भी लेते हैं। ये जरा गलत अच्छा, क्योंकि ये स्थिति कांडक घात और ये सब बातें बार बार आने वाली है, थोड़ा उसको बोर्ड पर देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो स्थिति कांडक घात का अर्थ पहले देखते हैं। स्थिति यानी जो सत्ता में पड़ी है उसको हम स्थिति कहते हैं ना, सत्ता में पड़ी है। तो हमने देखा वर्तमान समय से लेकर अनेक सागरों के परमाणु यहाँ पड़े हैं, एक एक समय का एक एक निश्चय इस रूप से पड़े हैं। स्थिति कांडक घात होता है, इसका अर्थ क्या है? ऊपर की जो स्थिति कंडम होगी, नीचे के बीच में से कोई स्थिति कांडक नहीं होता, ऊपर के लास्ट यानी सत्ता बहुत सारे कर्मों की अंत पोड़ा पोड़ी सागर है। और उसमें मान लेते कि ऊपर के कुछ परमाणु की स्थिति घट कर ने वहाँ के निषेकों का पूरा अभाव होकर वो परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। देखो अब यहाँ स्थिति कांडक घात समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये यहाँ वर्तमान समय नीचे और ये एकदम ऊपर है, वो अंतिम वहां यहाँ तक की स्थिति पड़ी है, सत्ता में पड़े कर्म पड़े। अभी वहां जो सफेद चीज लिखा है ना जिसमें आड़े लाइन नहीं बताई है, उसको कांडक आयाम यानी इतने स्थितियों का, इतने निषेकों का एक टुकड़ा, कांडक यानी उतने टुकड़ा। तो उसमें क्या होता है कि एक समय में थोड़े परमाणु नीचे आए, नीचे आने कहाँ दिए, यहाँ से लेकर सर्वत्र दिए, नीचे तक उदय के समय तक सर्वत्र दिए। दूसरे समय में और असंख्यात गुणा आकर सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तीसरे समय में ऐसे आया, एक अंतर्मुख में इतने पूरे निषेक नष्ट हो गए, इतनी स्थिति कटडाउन हो गई। अगर हमें निषेक खीरते तो एक एक समय में एक एक खीरता। अब एक छोटे अंतर्मुख में पल्लों इतनी या पल्ले के असंख्यात या संख्यात भाग इतना एक पूरा कांडक नष्ट होकर वो परमाणु कहीं गए नहीं, ये सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट हो नीचे के निषेकों में आ गए। तो उसमें से ये जो नीचे आते हैं ना कांडक घात होकर जो नीचे परमाणु आते हैं, तो नीचे जो उदय के समय से आवली प्रमाण काल तक दिए जाते हैं उसको कहेंगे वो उदयावली में आके दिए, उदीर्णा भी दिए वो उदयावली दिए। कुछ परमाणु नीचे इतने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिए उसको कहेंगे गुणित श्रेणी रूप से दिए। ऑलरेडी वहाँ प्री एग्जिस्टिंग निषेक तो थे, ये जो ऐसे ट्राइंगुलर लाइन नीचे ज़्यादा होते ऊपर कम होते परमाणु ऐसे ऑलरेडी थे पहले, अब नए जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो किस रूप से दिए, उदयावली में दिए कुछ और इनमें यहाँ इतने दिए तो उसमें और असंख्या गुना असंख्या गुना असंख्या ये सभी में इतने असंख्या गुना, तो दिखने में कैसे हो गए ऐसे दिए। ओरिजिनल कितने थे, इतने ही थे, उसमें इतने और एक्स्ट्रा मिल गए, इसको कहेंगे ये गुणश्रेणी होगी। ये गुणश्रेणी में कहाँ से मार आया, एक तो कांडक घात होकर भी आया, और केवल कांडक घात होता है ऐसा नहीं, रेगुलर सभी निषेकों में से भी आकर्षण होकर अपने अपने नीचे आते रहे। ये तो मोक्ष मार्ग में तो ऐसा ही स्वरूप है, ये आकर्षण होकर वो उन सब परमाणु अधिक मात्रा में नीचे आते रहते हैं और वो गुण श्रेणी वगैरह होती रहती है और वो अधिक मात्रा में खिलते रहते हैं। उसको वो उदीर्णा भी कहेंगे, गुणश्रेणी भी कहेंगे, कहाँ कौन सी गुणश्रेणी किस टाइप की होती उसकी, जहाँ जब उसका विषय आएगा तब उसकी और चर्चा करेंगे। अभी तो हम सामान्य से देख रहे हैं किसको कहना गुणश्रेणी, किसको कहना स्थिति कांडक घात। तो ये स्थितियों में जो ऊपर के कुछ निषेक पूरे घात होकर उसके परमाणु नीचे में सर्वत्र आ मिलते हैं, कोई उदयावली में जाते हैं कोई गुणश्रेणी में जाते हैं, और इसको कहते हैं ऊपरी तन स्थिति, ऊपर की स्थिति में जा देते हैं, इसको क्या कहा स्थिति कांडक घात। स्थितियों का कटना हो जाता है एक साथ, ऐसा एक शब्द आता है अनुभाग कांडक घात। अनुभागों में भी जो स्पर्धक होते हैं तो अनंत स्पर्धक कटडाउन होकर उसका अनुभाग घट जाता है, वो अनुभाग कांडक घात किसमें होता है तो अप्रशस्त कर्मों में। प्रशस्त कर्मों का अनुभाग तो बढ़ता रहता है और अप्रशस्त जो पाप रूप कर्म है, विज्ञानावरणादि वगैरह पाप रूप ही है ना साक्षी, और अन्य भी जो घाती अघाती जो कोई अप्रशस्त कर्म है सबका अनुभाग इतना घट जाता है। अभी अनुभाग में कैसा समझना, अभी जो एक एक निषेक बताया है वो प्रत्येक निषेक में अनुभाग जघन्य से उत्कृष्ट सारे पड़े, तो बिल्कुल उदयावली का भी निषेक लेकर सब निषेकों में से अनुभाग का घट नाम उसको कहेंगे अनुभाग कांडक धात, और वो होता है अप्रशस्त कर्म में। स्थिति कांडक धात होता है प्रशस्त अप्रशस्त सब में, क्योंकि प्रशस्त की स्थिति बढ़ जाए और अप्रशस्त कम हो जाए ऐसी थोड़ी ना, क्योंकि कोई भी स्थिति अधिक रहना हो तो मोक्ष मार्ग में तो उचित है ही नहीं है। तो स्थिति सबकी घटती है, किसकी? पुण्य पाप प्रकृति, जिसको हम प्रशस्त और अप्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति कटान होती है। आयु को छोड़ना, यहाँ पर आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्य सात कर्मों में स्थिति का कट हो जाना अनेक निषेकों का कांडक रूप से नष्ट होना उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। अनुभाग कांडक घात किसमें होगा? अप्रशस्त कर्मों में, अप्रशस्त ने पाप रूप कर्म लिया, ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, जो मोहिनी के, जो कुछ है उस सब में ये बातें होती हैं। सत्ता में पड़े हुए निषेकों में से ऊपर के अनेक स्थितियां घटकर नीचे के निषेकों में उसके परमाणु आते हैं। अब देखो ये अपूर्व करण परिणामों से ये बातें होती हैं। तीन करण परिणामों में पहला है अधप्रवृत्त करण, उसमें क्या क्या बातें होती है? तो जीवों की परिणाम अनंत गुना विशुद्ध होती है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बंधन बढ़ता है, चार प्रशस्तों का बढ़ता है और प्रशस्तों का घटता है, और स्थिति बंद भी जो नया स्थिति बंद होता है वो भी कम स्थिति वाला बनने, नया बनने वाला। अब ये अपूर्व करण में चार बातें कौन सी होती है? पहली तो कंटिन्यूस होती होती है, इन एडिशन क्या हो रहा है? गुण श्रेणी, जो अभी हमने देखी थी। गुण संक्रमण में क्या लेना? गुणित प्रमाण में संक्रमण। अभी वो कहाँ होता है और कौन सी प्रकृति में होते हैं उसकी विशेषता है, इतना होता है बस इतना ही देखना। अभी यहाँ हम बात देख रहे हैं अनंतानुबंधी के विसंयोजन, विसंयोजन में क्या देख रहे हैं? वो परमाणु नष्ट होने वाले, तो नष्ट होने के जाएंगे कहाँ? उसमें भी ऐसे कांडक रूप से वो अनंतानुबंधी के एक एक छोटे अंतर्मुर्त में वो कांडक रूप से अन्य प्रकृति रूप हो गए, वो कांडक नष्ट हुआ तो दूसरा कांडक लिया, वो सारा अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होकर नष्ट हुआ फिर और तीसरा हुआ, उसको भी गुण संक्रमण क्यों कहते हैं? गुणित प्रमाण है, पहले समय में जितने संक्रमित हुए दूसरे समय में असंख्यात होना, तीसरे समय में उससे असंख्यात होना, चौथे समय में उससे असंख्यात होना, तो एक कांडक नष्ट हुआ, फिर नीचे का और एक कांडक उसमें भी गुण संक्रमण होकर नष्ट हो जाएगा। यानी सत्ता में जितने परमाणु पड़े उदयावली को छोड़कर वो सारे ही संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं, उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। हाँ, कांडक आयाम का नीचे जितनी स्थिति होगी, जितनी स्थिति ज्यादा उसका आयाम कांडक का बड़ा, ऐसे कांडक आयाम होने के बाद स्थिति घटी और वो आयाम भी छोटे छोटे हो, वो कितना प्रमाण में जाता है, कितने प्रमाण में संक्रमित होते उसके सारे गणित हैं, उसके कितने उसकी कौन सी नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं, कौन सी संख्या से उसको डिवाइड करके जो उत्तर आता है उतने परमाणु संक्रमित होते या नष्ट होते, वो सारा बिल्कुल यानी एक एक परमाणु का वहाँ हिसाब है। इसके इतने डिटेल्स है, उस डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। हमारा तो यहाँ की विसंयोजन आप किसको कहना, ये तीन करण क्या है, उसमें क्या क्या बातें होती है, इसकी बात अभी हम देखेंगे। आयाम मैंने लंबाई, आयाम करते थे ये कांडक का आयाम, मैंने कांडक कितना लंबा है नाप उसका, ये एक समय में एक निषेक है तो जो पल्ले जिसको नाप है ना असंख्यात वर्षों को पल्ले कहते हैं, तो पल्ले के असंख्यात या संख्यात भाग प्रमाण इतने कांडक यानी इतने समयों के इतने वर्षों के जो उदय में आते समझो उतने का नष्ट हो गए उतने, उसको कहेंगे कांडक आयाम। जैसे यहाँ कांडक का आयाम कहा वैसे यहाँ गुणश्रेणी का आयाम कहा, गुणश्रेणी की लंबाई कितनी है, कितने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया है उसको कहेंगे गुणश्रेणी का आयाम, आयाम यानी उसकी लंबाई। देखो अभी आप पढ़ते यहाँ पर हो गए समय, एक वाक्य के पढ़ते अपूर्व कर्म में क्या क्या बातें होती है। देखो अपूर्व कर्म को प्राप्त होकर चौथी लाइन वहाँ गुण श्रेणी, इसका अर्थ हमने देखा गुण संक्रमण, गुणित प्रमाण में संक्रमित होकर नष्ट होना, स्थिति कांडक घात, ये सभी में हो रहा है, ज्ञानावरणादि सभी कर्मों में हो रहा है, केवल अनंतानुबंधी में नहीं सभी में इतनी गुणश्रेणी वगैरह सब में चलेगी, और अनुभाग कांडक घात ये चार कार्य होते, और उसकी जो डिटेल्स है अभी अपन दोपहर में देखेंगे, अभी तो अपना समय हो गया, यही रुकते हैं। बोलो 24 भगवान।